हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी, ऑल ग्लोरी, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग निताय गौर प्रिय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10th चैप्टर, सेकंड कैंटो 10th चैप्टर और 24th श्लोक, 24वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो आप दोहराइएगा। हस्तो रुरुहतो तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयो तु बलवानिन्द्रे आदनम उभय आश्रयम्। हस्तो रुरुहतो तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयो तु बलवानिन्द्र आदानम उभयाश्रयम्। हस्तो रुरुहतो तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयो तु बलवानिन्द्र आदनम उभयाश्रयम्। हस्तो रुरुहतस्तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानम उभयाश्रयम्। हस्तो रुरुहतो तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। हस्तो रुरुहतस्तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हस्तो रुरुहतस्तस्य नाना कर्म चिकीषया, तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। तो अनुवाद पढ़ेंगे। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। हम ये देख सकते हैं कि जीव आत्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार जीव आत्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीव आत्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीव आत्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने शुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बाहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वो अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरुन् श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रियाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम जिस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, सेकंड कैंटो 10th चैप्टर 24th श्लोक, तो इसके अंदर बताया गया है कि हाथों के बारे में चर्चा करी गई है कि जब भगवान के अंग प्रकट होते हैं उसी के कारण हमारे भी अंग प्रकट होते हैं, क्योंकि हम कौन हैं, भगवान के अंश मात्र हैं। भगवान कहते हैं माम एव अंशो जीव लोका जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति करिष्यति। तो जो है भगवान की इच्छा के अनुरूप जब भगवान के हाथ प्रकट होते हैं, आंखें प्रकट होती हैं, तभी हम देख पाते हैं जगत को, तभी हम कार्य कर पाते हैं। और हर एक इंद्रिया जो हमारे शरीर में है उसकी एक नियामक देवता है, जैसा कि पिछले कई श्लोकों में चर्चा हो चुकी है। तो हाथों के जो देवता है वो है इंद्र, है ना। और इंद्र जो है वो हमारे जो हाथों की बताते हैं कि किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए, हमारे हाथों को किधर जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी हमको इसके अंदर परपट में समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने इंद्रियों का स्वामी नहीं होता, हम लोग कौन है, अपने इंद्रियों के दास, गुलाम। तो इसीलिए हम जो है गोदास, इंद्रियों को एक शब्द गोदास भी बोला जाता है, है ना। और हमारी जो आत्मा है वो इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के ऊपर सवार है, जिसमें आँख है, नाक है। भगवद गीता में आपने वो चित्र देखा है जिसमें 5 घोड़े हैं और उसके ऊपर मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी रथ है और उसके ऊपर आत्मा सवार है। तो ये जो माया का शरीर है ये इसमें 5 घोड़े हैं, जो कि 5 इंद्रियां हैं हमारी। कौन कौन सी, एक सूंघने की इंद्री, एक देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, खाने की इंद्री जिह्वा, और फिर ये छूने की त्वचा। ये 5 इंद्रियों से हमारा शरीर, हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो आप देखने की बात यह है कि करना तो इस प्रकार से चाहिए कि जो घोड़े हैं 5 इंद्रियों के, उनकी लगाम मन उसे खींच के रखे। और जिसके कारण वो कैसे हो पाएगा, जब हम अपनी बुद्धि को सही तरह से यूज करेंगे, तब फिर हमारी आत्मा सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाएगी, जो है भगवत धाम। अन्यथा क्या होगा कि अगर इधर उधर घोड़े भागेंगे तो जो उसके ऊपर सवारी है आत्मा, उसका डेस्टिनेशन, गंतव्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे। तो जो बताते हैं कि जो ये इंद्रियां हैं इनके, इनका कंट्रोल, इनका नियंत्रण देवी देवताओं के हाथों में होता है। जैसे बताया गया आंखों का सूर्य देवता, हाथों का इंद्र देवता। और जो ये जितने भी डेमी गॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, ये स्वयं भगवान कृष्ण के नियंत्रण में, इसलिए भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम हेतानुनेन कौन्तवे जगत विप्रीवर्तते। ये सारा का सारा जगत जो है वो मेरी इच्छा के अनुरूप ही चल रहा है, और सारी जितनी भी माया है इसमें जितने 33 करोड़ देवी देवता है ये सब कौन है, मेरी अध्यक्षता में। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट होता है ऐसे अध्यक्ष, अध्यक्षता में भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। और जितने भी हमारी इंद्रियां हैं जो हमने अभी बात करी, देखने सूंघने की बोलने की खाने की, ये सारी क्या है, एक सर्प के समान है। जैसे सर्प होता है ना, वो सर्प क्या होता है कि भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो सांप को पकड़ सकता है। कौन होता है वो? हाँ, सपेरा। सपेरा जो है वो पकड़ सकता है, और पकड़ने के बाद वो बीन बजाता है, और बीन बजाने से क्या होता है, सर्प उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन अभी अभी हम सर्प के कंट्रोल में, सर्प हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो इंद्रियां हैं ये सर्प के समान है, और ये क्या करती हैं, डस लेती हैं हमको। जितने भी सपेरे की मृत्यु होती है वो क्या होता है, उन्हीं सर्पों के द्वारा होती है जिनके साथ वो खेलते हैं पूरा जीवन। तो ये देखने वाली बात है कि जो इंद्रियां हैं इधर उधर जो भाग रही हैं, इनको कंट्रोल करने की जो बीन है वो कौन सी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ये इंद्रियां हैं, जब हम ये भगवान के नामों का जप करते हैं, पाप नियमों का पालन करते हैं, तो क्या है, सर्प तो रहेगा, इंद्री रहेगी, लेकिन उसका जो विष दंत है ना, दांत जो जहरीला दांत है वो निकल जाएगा, और फिर वो इंद्रियां जो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए फिर हम गो दास नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे, गोस्वामी। तो जो व्यक्ति है, जैसे महाराज होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो लोग गोस्वामी या स्वामी कैसे बन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं अटेंड करी है कि कोई एग्जाम दिया और वो क्लियर कर लिया तो वो उनका टाइटल गोस्वामी हो गया। उन्होंने अपनी इंद्रियों का नियंत्रण किया, किस प्रकार से, भगवान की सेवा में लगाकर। इसलिए एक श्लोक आता है भगवद गीता में कि विषय विनिवर्तन्ते निर्हारस्य दहिनाम रसो वर्जन रसो अप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें तात्पर्य यह है कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, उनको अगर हम चाहें कि हम देखना बंद कर दें, आंखों पे पट्टी बांध दें, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हम सुनना बंद कर दें, कानों में रुई लगा लें, इससे हम कुछ पल रह पाएंगे, हो सकता है एक साल दो साल हम अपना जीवन जी लें, लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति को सुनना है देखना है क्योंकि इंद्रियां दी हैं, तो इनको आप बंद करके नहीं रख सकते। सांप कितनी देर तक पिटारे में रहेगा, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा किसी भी स्थिति से। तो ऐसे ही जितने भी लोग त्यागी होते हैं वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, और फिर थोड़े दिनों बाद वहां जाते हैं जंगल में, क्या करते हैं, फिर वही इंद्रिय भोग करने लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद उसको मरकट वैराग कहते हैं। मरकट का अर्थ है बंदर संस्कृत में। तो बंदर क्या करता है कि वैसे तो उसके पास कोई वस्त्र नहीं है, कोई LIC नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कार नहीं है, लेकिन जब वो किसी दूसरी स्त्री को स्त्री रूपी बंदर, जैसे बंदरिया कहते हैं, उसको देखता है तो उसके अंदर काम उत्तेजना प्रकट हो जाती है। उसको कहीं बहुत सारा 1 किलो आम पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको खाने लग जाएगा। उसके अंदर इंद्रिय भोग अभी भी बाकी है, लेकिन सिर्फ वो देखने में ऐसा लगता है कितना बड़ा वैरागी है। तो हमको ऐसा वैरागी नहीं बनना है जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर कुछ समय बाद दोबारा से इंद्रियां काम करने लग जाए। ये बड़ी ध्यानपूर्वक हमें इसमें रहना है। तो कब होगा, जब परम दृष्टा निर्वर्तते। परम दृष्टा क्या है, कि जब परम रस की प्राप्ति होगी तब फिर हमारी इंद्रियां जो है वो इधर उधर नहीं भागेंगी। परम रस क्या है, भगवान की सेवा करना है ना। जैसे कि एक बहुत सुंदर कथा आती है, उसमें बताया गया है कि कैसे हमारी इंद्रियां जो है वो रॉन्ग डायरेक्शंस में, गलत दिशाओं में भटक जाती हैं, कितना भी कंट्रोल करो लेकिन कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते थे, साहित्यिक कथा है हमारे शास्त्रों से, बिल्लव मंगल ठाकुर की कथा, जानते होंगे आप सभी लोग। लेकिन जो है इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्लव मंगल ठाकुर थे वो वृंदावन में रहे हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है कृष्ण करुणामृतम, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बिल्लव मंगल ठाकुर जैसा भक्त होना बहुत मुश्किल है। तो देखिए बिल्लव मंगल ठाकुर कैसे इतने बड़े भक्त बने, कि वो बताते हैं प्रभुपाद कि अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, है ना। जैसे बताया गया है कि कृष्ण भक्ति अगर पूर्ण नहीं होती इस एक जन्म में तो क्या कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। शुचिनाम या तो पवित्र परिवार में या फिर श्रीमताम पैसे वाले धनी परिवार में उस व्यक्ति का जन्म होता है जिसने अपनी भक्ति पूर्ण नहीं करी इस जन्म में। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में यही भेद है। भौतिक जीवन में हम अगर एक से शुरू करके 99 तक पहुंच जाएं, स्नेक एंड लैडर, और 99 पे हमको सांप ने डस लिया तो हम वापस जीरो पे आएंगे और अगले जन्म में फिर ABCD हमको याद करनी पड़ेगी, चाहे इस जन्म में हम डॉक्टर बन जाएं या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि अगर एक जन्म में आपने 50 तक गेन कर लिया तो नेक्स्ट बर्थ दूसरा जन्म जब होगा तो उसमें आप 51 से स्टार्ट करेंगे, है ना। श्रीमताम शुचिनाम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते, जिनका योग भ्रष्ट हो गया है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त। इस जन्म में उनका परिवार में कौन से में जन्म हुआ, श्रीमताम धनी परिवार में, रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब व्यक्ति के पास धन आता है तो फिर वो गलत संग मिलता है, उनके दोस्त मिले जो उनको गलत दिशाओं में ले जाते थे। वो शादीशुदा व्यक्ति थे, गृहस्थ जीवन था और घर में बहुत सुंदर कृष्ण कथा होती थी, डेली भागवतम होती थी, उनके पिताजी स्वयं बहुत बड़े श्री वैष्णव थे और वो उनको भक्ति के बारे में बताते थे और रोज भागवत कथा होती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये देखिए इंद्रियां, हम सोचें कि हम तो रोज रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसके बाद अचानक से पता नहीं कब इंद्रियां हमारी भटक जाती हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति एक रेजर ब्लेड उस्तरे पे चलने के समान है कि अगर ज्यादा पैर दबा दिया तो भी खून निकल जाएगा और कम धीरे धीरे रखा तो भी हम फॉल डाउन गिर जाएंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक इस पे चलना है। और ऐसे ही जैसे सपेरे जो है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान हट जाए तो उसी सपेरे के सांप जिसने उन्हें पाला है वही सांप उस सपेरे को डस लेते हैं। तो यही इंद्रियां जो हमारी हैं अंतकाल में हमको डस लेंगी, तो इससे पहले ये ना डसे इनको इस प्रकार से कृष्ण सेवा में लगाना है ध्यान पूर्वक, कहीं पर भी हम मौका न दे इनको हमको डसने के लिए, है ना। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना घट जाए इससे पहले सावधानी हटनी नहीं चाहिए। सजा कृष्ण चिंतन में, कृष्ण प्रभुपाद कह रहे हैं अ डिवोटी इज 24 आवर कृष्ण डिवोटी। ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट डिवोटी या फिर मॉर्निंग प्रोग्राम डिवोटी, इवनिंग में जो है वो मस्ती कर सकता है, पिक्चर देख सकता है। कृष्ण डिवोटी इज अ 24 आवर डिवोटी। जब वो सो रहा है तभी वो प्रचार कर रहा है, उसके सोने के तरीके से दूसरा व्यक्ति देख रहा है, देखो कितनी विनम्रता से सो रहा है ना, ऐसे हा करके नहीं सो रहा है ना। तो जो व्यक्ति जैसा आचरण रखेगा उसके सोने में, उसके चलने में, उसके बैठने में, सब जगह वो प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति किन लोगों का संग करता है ना। जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, वैसा ही हमारा ढंग बन जाता है। तो उसमें बता रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर ग्रस्त व्यक्ति थे और उसके बाद उनके एक मित्र उनको एक बार ले जाते हैं चिंतामणि नाम की वेश्या के पास और कहते हैं कि सुनो कितना सुंदर भजन गाती हैं, और वो कृष्ण भजन गाकर सुनाती हैं और ये भी उसमें गुनगुनाने लगते हैं। और इनका वॉइस अटैचमेंट, शरीर अटैचमेंट नहीं होता है, वॉइस से अटैचमेंट, आवाज से अटैचमेंट हो जाता है चिंतामणि की। और फिर अपनी पत्नी को त्याग करके ये रोज उसके पास जाते थे सुनने के लिए भजन, और कृष्ण भजन। अभी देखें तो दूसरे लगेगा बाहर से कि वाह ये भजन ही तो सुन रहा है, क्या डिफरेंस है। ऐसे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी जरूरी है कि हम इस्कॉन के भक्तों के भजन सुने, हम भागवत भजन भी तो सुन सकते हैं, बाहर कथाएं होती हैं उनके भजन में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूध जिसमें जहर सांप ने मुंह डाल दिया हो वो जहरीला बन जाता है, देखने में दूध ही लगता है लेकिन वो जहरीला दूध बन जाता है। तो वैसे ही जो ये थे ये भजन सुनने जाते थे, लेकिन क्यों चिंतामणि जो इस भजन को गाती थी तो उसके अंदर काम उत्तेजना थी, तो उसी के कारण इनकी हृदय में भी काम उत्तेजना प्रकट होने लगी। ग्रस्त व्यक्ति जो भक्ति करता है, भागवत पढ़ता है, रोज जाप करता है, वो व्यक्ति भी एक ऐसे संघ में आने से, और वो भी वहां पर भी भजन ही हो रहा है, वहां पर और कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, जो व्यक्ति जो औरत गा रही है वो सुर लगा के गा रही है, और फिर वो धीरे धीरे, आज भी हम बोलते हैं ना भक्त लोगों को कि ट्यून इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में भजन गाने के लिए, लेकिन ट्यून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति का भाव कैसा है। तो वैसे ही इसके अंदर, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो चिंतामणि की कॉन्शियसनेस प्योर नहीं थी, इसी के कारण उसके कृष्ण भजन ने उनके जीवन में काम उत्तेजना को प्रकट किया, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी अपनी पत्नी का त्याग करना शुरू कर दिया और सारा का सारा समय चिंतामणि के साथ गुजारने लगे। इवन अपनी जो गद्दी थी जिस रॉयल फैमिली में जिसमें बैठते थे उसका भी ध्यान आधा कर दिया उन्होंने, और ध्यान धंधे की तरफ भी ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उनके घर में उनके पिताजी का श्राद्ध था, श्राद्ध है जिसके पिता का, वो व्यक्ति उस श्राद्ध को, उस कर्म को छोड़कर, अपने गृहस्थ परिवार को छोड़कर कहाँ जा रहा है कि चिंतामणि का भजन सुनना है मुझे, तो वो भजन से आसक्त नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक आसक्ति भी बढ़ने लग गई। और फिर एक दिन रात को बहुत तूफान था, जिस दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था, रूपा जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो चलता चला गया और वहां पर एक नदी पड़ती थी रस्ते में। उस नदी में एक जो है वो लकड़ी पड़ी थी और लकड़ी को पकड़ के वो तैर कर पार हो गया। जब वो पहुंचा तो चिंतामणि के घर पर जाकर बोला, खोलो खोलो खोलो। चिंतामणि ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बड़ा अफसोस में पड़ गया कि चिंतामणि तो मेरा स्वागत नहीं कर रही, रोज तो बुलाती थी। तो देखा कि एक रस्सी लटक रही है उनके घर के बाहर, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर चढ़ा, ऊपर घर में पहुंचा तो चिंतामणि देखकर हैरान हो गई। कह रहे, इतने बारिश में रात के 1 बजे तुम कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? कह रहे, मुझे तुम्हारी याद सता रही थी, तुमसे मिलने की जो जिज्ञासा थी उसके कारण मैं सारे परेशानियों को पार करता आया हूँ। लेकिन देखो भगवान की कितनी अच्छी मदद मिली मेरे को कि मुझे लकड़ी मिली, फिर वहां से रस्सी मिली। तो उसने ध्यानपूर्वक जब देखा चिंतामणि ने घर से खड़े होकर, तो पता चला कि वो लकड़ी नहीं थी, किसी की डेड बॉडी जैसे गंगा में बहा देते हैं तो वो नदी में तैर, तो पकड़ कर वो तैर कर तैर रहा है और उसको क्या लग रहा है कि मैं तो लकड़ी पकड़ कर तैर रहा हूँ। इतना ज्यादा वो उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, है ना। और फिर जब आया तो वहां पर एक सांप लटक रहा था, जिसको उसने सोचा कि ये एक रस्सी है, अगर वो सांप उसको काट लेता तो उसका वहीं पर अंत हो जाता। लेकिन वो भूल गया है आसक्ति के कारण, बस अपने परिवार की आसक्ति, बस उस स्त्री के शारीरिक आसक्ति के कारण वो चलता चला जा रहा है, सारे डेंजर पार करता हुआ। और जब ऊपर पहुंचा तो चिंतामणि ने उसको ज्ञान दिया। क्या बोला कि तुम्हें जितनी आसक्ति मुझसे है, जितना प्रयास तुमने मेरे लिए किया, अगर इतना प्रयास तुमने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया होता तो आज तुमको भगवान के दर्शन हो जाते। और उसके जीवन में वैराग उत्पन्न हुआ। जब वैराग उत्पन्न हुआ तो वो वृंदावन की ओर चल दिए। और वृंदावन की ओर जाकर चल रहे थे, रास्ते में उनके एक मित्र का घर पड़ा और उनको प्यास लगी तो वो वहाँ पानी पीने के लिए रुके। तो उनकी जो स्त्री थी उसमें भी उसको कौन नजर आ रही है, चिंतामणि। फिर से उसको वो चिंतामणि नजर आने लगी, जबकि अभी वैराग उत्पन्न हुआ फिर भी उसको चिंतामणि दिखने लग गई। तो देखिए, कहते हैं कि 2-3 प्रकार के वैरागों का वर्णन आता है भागवतम में। तो उसमें एक वैराग ये होता है कि शमशान वैराग्य बोला जाता है। जब हम किसी के शमशान में जाते हैं मृत हैया पे, तो व्यक्ति के मन में ना बहुत वैराग उत्पन्न होता है, बहुत भाव आता है कि देखो कैसा जीवन है, कल आए थे अब पता नहीं चला, कुछ ही समय था इतने अच्छे खासे थे अभी चले गए। वैराग उत्पन्न हो जाता है और बोलता है कुछ नहीं करूंगा, बस जाऊंगा और फिर क्या करूंगा, बस भगवत नाम लूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। लेकिन जैसे ही वो शमशान से बाहर आता है वैसे ही उसका वैराग समाप्त हो जाता है और फोन उठा के क्या बोलता है, हाँ क्या हुआ बिजनेस का, मेरी गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। व्यक्ति के ये शमशान वैराग्य है, कुछ पल के लिए क्षणिक वैराग्य। और एक होता है जो है आपका, हमने अभी बात करी उसमें, जैसे कि क्षणिक वैराग में बुजुर्ग लोग होते हैं घर के अंदर, वो क्या करते हैं कि जब बहू ने कुछ बोल दिया उल्टा तो वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो अब घर को त्याग देना चाहिए, तो अपना सामान वामान पैक करते हैं, अब मैं वृंदावन रहूंगा, और सब कुछ पैक करके चले जाते हैं। सुबह 5 बजे निकल गए, 10 बजे तक जब तक सब लोग तैयार व्यार होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तब तक ऑटो आकर रुक जाता है। तो बोलते हैं, अरे पिताजी आप तो वृंदावन चले गए थे फिर वापिस आ गए। कह रहे, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस पोते के लिए आया हूँ, ये वरना याद करता दादू 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 कहता, मैं तो इसके लिए वापस आ गया हूँ, है ना। तो ये लोगों के अंदर क्षणिक वैराग्य है, क्योंकि उनकी आसक्ति परिवार में, कृष्ण में आसक्ति नहीं। श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंचतत्व तो क्षणिक वैराग्य है। और मर्कट वैराग्य जैसे हमने भी बात करी, बंदर का वैराग्य कि वो वृंदावन में जंगलों में रहता है लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसकी आसक्ति कृष्ण में नहीं होती है, उसकी आसक्ति क्या है, अभी भी भोगों के अंदर है, इंद्रियों के अंदर है। और फिर हमें प्रभुपाद बोलते हैं युक्त वैराग्य करने के लिए। युक्त वैराग मतलब इसी जगह पर जहाँ भी हैं वहीं पर रहें, लेकिन क्या करें, भगवान के नामों का जप करें, भागवतम का श्रवण करें, भक्तों का संग करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारी इंद्रियां जो हैं वो सही तरह से कार्य करेंगी। युक्त वैराग्य, युक्त मतलब कृष्ण से युक्त होकर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। ये जो नकली वैराग्य है वो नहीं हमारे अंदर आना चाहिए कि प्रभु जी हम बंद कर देंगे, एसी बंद कर देंगे, सड़क पे सोएंगे, मच्छर काटेंगे, फिर 3 दिन तक हम जगते रहेंगे और फिर जप नहीं करेंगे। तो अगर एसी की जरूरत है तो एसी चलाकर सोइए, लेकिन क्या है, उठकर सुबह भगवान के नामों का जप करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी इंपॉर्टेंट नहीं है, या नहीं है, नहीं है तब भी ठीक है तब भी ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भगवान के नामों का जप करना। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं युक्त वैराग्य। और प्रभुपाद ने इसके इस परपट में बहुत सुंदर बताया है कि वृंदावन में लोग जाते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, तो वहां पर जितने भी बंदर देखते हैं आप, उसमें कछुए देखते हैं कुंडों के अंदर, ये वही है जो लोग इंद्र तृप्ति करने के लिए धाम में जाते हैं। तो धाम में जो व्यक्ति घूमने के पर्पज से जाएगा और कुंडों में स्नान करने के पर्पज से जाएगा कि मैं तो खूब ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा, वो जानेगा नहीं कि कृष्ण भावना भवित क्या है, कृष्ण से उसका प्रेम नहीं है, कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति वहां पर कछुआ और बंदर बनता है। प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा है, ही विल बिकम डॉग्स एंड फ्रॉग्स इन द लैंड होली लैंड ऑफ वृंदावन। वृंदावन की लैंड पर वो क्या बनेंगे, हॉग्स डॉग्स फ्रॉग्स, मेढक बनेंगे, हॉग्स बनेंगे, सुअर बनेंगे और डॉग्स कुत्ते बनेंगे। तो सोचिए कि अगर कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण की इंद्र तृप्ति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम वृंदावन जा रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, अन्यथा हमारे को नहीं जाना चाहिए। और जब जाएं भी, अगर हम इतना तृप्त करने वाली स्थिति में नहीं है, तो भक्तों के संग में जाएं जिनकी कृपा से हमारा मन इधर उधर ना भटके, तो इसमें यह बताया गया। तो फिर क्या हुआ कि वो जब चिंतामणि उनको दोबारा नजर आने लगी उन्हीं अपने मित्र की पत्नी के अंदर, तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले इन नेत्रों के कारण जो मैं हूँ बार बार अपने पथ से भ्रमित हो जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन नेत्रों को ही खत्म कर देना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा अपने मित्र की पत्नी से कि माता मुझको अपने सर के ऊपर जो लगाए हुए अपने पिन होते हैं ना, बालों में जो पिन लगाते हैं, वो पिन मुझे दे दीजिए। और उन पिन से क्या किया उन्होंने, अपने नेत्रों को फोड़ दिया। और दोनों नेत्रों को फोड़ने का, तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा मतलब बुरा उनको लगने लगा, शोक व्यक्त करने लगे कि क्या किया आपने। बोले नहीं मुझे करने दीजिए, इन्हीं नेत्रों के कारण तो मुझे क्या हुआ, मैं पथ भ्रमित हुआ हूँ, बार बार मुझे दूसरों की गलतियाँ नजर आती हैं, दूसरों के फॉल्ट नजर आते हैं, स्त्रियों की आसक्ति नजर आती है, मुझे संसार की आसक्ति, अगर ये नेत्र ना रहे तो मैं बस कृष्णा भावना भ्रमित हो सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम भी अपने नेत्रों को फोड़ दें। हमें अपने नेत्रों को फोड़ने का क्या मतलब है कि भौतिक नेत्रों को फोड़कर आध्यात्मिक नेत्रों को जागृत करना है, कृष्ण भावना भवित नेत्रों को जागृत करना है ना। और फिर उन्होंने क्या किया कि तब फिर वो जाकर वृंदावन में रहने लगे, और वृंदावन में जाकर वो सिर्फ एक ही नामों का जप करते थे, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर उनको बताया गया है शास्त्रों में कि उनको कृष्ण चेतना प्राप्त हुई, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको कृष्ण चेतना प्राप्त हुई और स्वयं भगवान उनके आंखों के सामने प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होकर उनको खीर खिलाए अपने हाथों से, और खीर खिलाने के बाद में भगवान ने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और उनको नेत्र प्रदान किए ताकि वो देख सकते हैं। तो जब उनसे भगवान ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने अपनी सिर्फ एक इच्छा व्यक्त करी, क्या, कि भगवान जिन नेत्रों को आपने मुझे देखकर दर्शन कराया इनको वापस ले लीजिए। तो भगवान बोले, अरे तुम तो इतने ज्यादा अब भक्त बन चुके हो, अब तुम्हारे नेत्रों से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बोले नहीं, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अब आखिरी बार आपका दर्शन कर लिया, अब यही दर्शन मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, और इन नेत्रों को आप मुझसे वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा, तथा तो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा होगा, और भगवान ने नेत्रों को वापस ले लिया। और इनके साथ साथ क्या हुआ कि चिंतामणि जो थी वो भी वृंदावन में चली गई, इस आसक्ति के कारण, इस वैराग्य के कारण कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, और उनके शरीर की आसक्ति के कारण जो है इस व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा हाल हुआ। इस बात को सोचते हुए बिल्ल मंगल ठाकुर के चिंतामणि भी अपने घर का त्याग करके चले गए, और संतों के पास जाकर पूछा कि मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उनसे पार पाने के लिए क्या है। तो उन्होंने बोला, भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापाभ्यो मोक्षयामि माम शरणम, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, अहम त्वम सर्व पापाभ्यो मोक्षयामि माम शरणम। लेकिन जो भक्त हैं उनके साथ भगवान के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, क्योंकि तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वम सर्व पापाभ्यों, लेकिन ये नहीं कह रहे अहम त्वम सर्व अपराधोभ्यों, भगवान अपराधों को माफ नहीं करते हैं, भगवान पापों को माफ कर रहे हैं। तो भक्तों के साथ क्या दिक्कत है कि उनको भक्ति कृष्ण चेतना क्यों नहीं प्राप्त होती, ज्यादा समय तक हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं और हम अपराध ज्यादा करते हैं, बजाय इसके कि हम जो है कृष्ण भावना भवित हों, और उन अपराधों के कारण भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अहम भक्ता अपराधीनो, अम्बरीश महाराज की कथा से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने भक्त के प्रति अपराध किया तो भक्त ही आपको क्षमा कर सकता है, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं
पाप आपने जो किए उनके लिए मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। तो चिंतामणि ने जो पाप किए थे उसके लिए भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और उनको जो बिल्लभ मंगल ठाकुर के शिक्षा गुरु होने का जो है फल प्रदान किया, क्योंकि बिल्लभ मंगल ठाकुर के अंदर वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि चिंतामणि ने कहा कि तुम अगर इतनी आसक्ति कृष्ण के प्रति रखते तो आज तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो जाता। सिर्फ इस बात के कारण भगवान ने चिंतामणि को भी शिक्षा गुरु का स्टेटस एक स्थान प्रदान करके और उनको भी धाम दिया और उनको भी दर्शन दिए। तो ये देखिए कि कितना सुंदर है कि हम अपने जीवन में भौतिक आसक्तियों में पड़े रहते हैं, हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह गया है। इंद्रियां जहां कहती हैं वहां चलते हैं, आंखें बोलती हैं कि चलो टेलीविजन देखते हैं, अवार्ड फंक्शन आ रहा है तो हम देखने लग जाते हैं, हाथ कहते हैं कि चलो घूम के आते हैं ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव शिमला मनाली जाते हैं तो हाथ चलने लग जाते हैं, पैर कहते हैं चलो हम बाजार जाते हैं मॉल घूम के आएंगे। तो ये हमारी इंद्रियां हमको घुमा के ले जा रही है, हम अपनी इंद्रियों को नहीं बोलते कि चलो तो मंदिर की तरफ ही चलोगे और कहीं नहीं चलोगे, हाथ तो चलेंगे सिर्फ वृंदावन धाम जाएंगे भक्तों को दर्शन कराने के लिए, और ये आंखें सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन करेंगी, श्री राधा गोविंद का दर्शन करेंगी और किसी का दर्शन नहीं करेंगी। इस प्रकार से हम इंद्रियों को ऑर्डर नहीं देते, इंद्रियां हमको ऑर्डर देती हैं। ये जुबान कहेगी गोलगप्पे की देखो ठेला लगा हुआ है चलो गोलगप्पे खाएंगे, इंद्रियां कहती हैं हमें ऑर्डर। तो हम मालिक कैसे हुए, लोग बोलते ना आई एम द प्रोप्राइटर, लिखते भी हैं आई एम द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि वो एक बाहर भौतिक जीवन के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हो, ओनर हो, लेकिन देखा जाए तो वो एक सर्वेंट है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियां जहां बोल रही हैं उनके अनुसार चले जा रहे हैं। अजामिल का जीवन जो है वो भी देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा अपनी पत्नी जो थी वैश्या के उसके जीवन में इतने 48 ईयर्स तक उन्होंने अपने जीवन को निकाला, 88 उन्होंने सिर्फ भोग किया, है ना। तो देखिए इंद्रियां जहां बोल रही हैं चलो तो चल देते हैं, तो फिर वो मालिक कहां हुआ, वो तो दास है। तो हम सब कौन है, गोदास, और हमें बनना क्या है, गोस्वामी। लेकिन देखिए भौतिक जीवन के उदाहरण से भी हम सीख सकते हैं कि जो गायक होते हैं ना, सिंगर्स जो होते हैं, वो भी अपने जीवन में देखे कोल्ड ड्रिंक्स खट्टा मीठा नहीं खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको परफॉर्म करना है, तो उनके जीवन का कुछ सेल्फ कंट्रोल है, है ना। और जैसे पायलट्स होते हैं, मान लीजिए कोई एरोप्लेन का पायलट है और वो सुबह सुबह पैक लगाकर क्या कहते हैं अल्कोहल पीकर आ रहा है, तो क्या कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन वो नहीं पीता क्योंकि उसको ऐसा काम करना। ऐसे ही हमको भी अपने जीवन में अगर नियंत्रण लाना पड़ेगा, नियंत्रण नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा, हम कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकते। इवन जो डायबिटीज बीमारी होती है उसमें भी डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स। डूज क्या है कि आप उस नियम पे दवाई खानी है, आपको वॉक करने जाना है, ये डूज है। डोंट्स क्या है, आपको जो है मीठा नहीं खाना है, आपको ज्यादा देर तक जो है अगर चोट लग जाए तो ज्यादा दिनों तक हीलिंग के लिए आपको टाइम पर दवाई लेनी है, है ना। ये डोंट्स है, आपको चाय नहीं पीनी है, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के भी डूज और डोंट्स होने चाहिए। क्या डूज होने चाहिए, कि हम भक्तों का संग करें, है ना, और भागवत का अध्ययन करें, इन हाथों से भागवत को रोज सुबह खोलें, गीता को खोलें और उसका अध्ययन करें, और क्या करें, भक्तों का संग करें, भगवान के नामों का जप करें। ये देखिए हाथ जो है इसकी कितनी वैल्यू है जब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है, अगर इस हाथ को इस शरीर से काट दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये या तो जला दिया जाएगा या मिट्टी में पड़ा रहेगा, और यहाँ पर कोई बैंडेड लगाकर जीवन चल आदमी इधर चला जाएगा, हाथ इधर चला जाएगा, लेकिन जब तक ये हाथ इससे जुड़ा हुआ है इसकी कितनी वैल्यू है, और इसका क्या कर्तव्य है कि इसकी पूर्ण की सेवा करना, यहाँ से निवाला उठाया प्रसाद का और मुंह में डाला। अगर ये हाथ न रहे तो हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और सबसे सर्वोपरि कार्य क्या है इसका, कि जिस प्रकार से ये हाथ से उठाकर निवाला हमारे मुंह में डालता है, इसी प्रकार से ये हाथ हमको कृष्ण से भी जोड़ सकता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे आस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे। अगर मैं संतुष्ट हूं तो पूरा का पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है, अगर मैं रुष्ट हूं तो पूरा का पूरा जगत रुष्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने जीवन में, इस संसार के साथ तो प्यार करते हैं और भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। करना क्या चाहिए, भगवान के साथ प्यार करना चाहिए, संसार के साथ व्यवहार करना चाहिए। भगवान के साथ में अगर एक घंटा है तो उसमें से 40-50 मिनट भगवान के साथ, 10 मिनट पब्लिक के साथ, लेकिन हम क्या करते हैं 10 मिनट भगवान के साथ 50 मिनट पब्लिक के साथ। अब खुद देखने हम एनालाइज करें अपने जीवन को, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है, अपने जीवन को खुद एनालाइज करें कि भगवान का विग्रह का दर्शन हम पूरे दिन में कितनी देर करते हैं और पब्लिक का दर्शन हम पूरे दिन में हम कितनी देर करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हम अपने इंद्रियों को किस तरफ लगा रहे हैं। है ना। तो इस हाथ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगवान ने दिया है इसमें उंगली डालकर जप करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये डूज है, हमको ऐसा करना है, धाम में जाना है, धाम में वास करना है, भक्तों का संग करना है। और डोंट्स हैं, चार पाप नियम का पालन करना है जो बताए गए हैं आपके वगैरह वगैरह, जैसे इंटॉक्सिकेशन नहीं, चाय कॉफी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, लेसन पे आज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ये डूज एंड डोंट्स हैं हमारे जीवन के, ये नहीं करना ये करना है, जैसे यम और नियम कहते हैं उसी प्रकार से। लेकिन डायबिटीज में ये दोनों चीजें तो व्यक्ति ने करी, लेकिन दवाई क्या है? तो दवाई बहुत सुंदर, नवे स्कंद में दवाई के बारे में बताया है कि एक भक्त के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की कैसे किस प्रकार से लगा सकते हैं, उसके लिए भगवान बोलते हैं। इसमें अमरीश महाराज के लिए बोला गया है, सबे मन कृष्ण पदारविंदम, मन को कहां लगाओ? कृष्ण के चरणों में। सबे मन कृष्ण पदारविंदम वचांसी वैकुंठ गुणान अनुवर्णन, क्या करो भगवान से, जो भगवान ने जो वचन से, जो वचन वचन करने के लिए जो मुंह बनाया है, इससे क्या करो? वचाम सी वैकुंठ गुणान अनुवर्णन, इससे वैकुंठ के गुणों का अनुवर्णन करो, इससे वैकुंठ की महिमा का गान करो। जिससे मिलो जारे देख के तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा ते गुरु को ये तारे ही देश, यही बोला महाप्रभु ने। जिससे मिले उसके उससे क्या करे? वाचाम सी वैकुंठ गुणान अनुवर्णन, वैकुंठ के गुणों का अनुवर्णन करे। और करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, करो मतलब हाथों को कहां लगाएं, जिसके बारे में यहां वर्णन हुआ है, इन हाथों को किसकी सेवा में लगाएं? करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, इससे मंदिर का मार्जन करो। जितने भी विष्णु मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, जैसे हमारा इस्कॉन टेम्पल है, प्रभुपाद बोल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल इज नन अदर देन वैकुंठा, ये बिल्कुल वैकुंठ के समान है, क्योंकि यहां पर सब लोग भगवान के नामों का जप करते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या करें? क्लीनिंग, जैसे हमारे प्रभु जी करते हैं, यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं। तो ये है, करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, फिर क्या करें? श्रुतिम चक्रार अच्युत सदा कथा उदय, श्रुतिम क्या सुने हमेशा, चक्रा चक्रा मतलब जो भगवान चक्र लेके रहते हैं, चक्रार अच्युत है, अच्युत मतलब जो भगवान कभी फेल नहीं होते, जो कार्य करते हैं उसमें हमेशा पूर्ण होते हैं, ऐसे चक्रार अच्युत भगवान की श्रुति में सदा कथा उदय, उनकी कथा का सदा श्रवण करते रहे। मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो, मतलब क्या करें? मुकुंद, मुकुंद मतलब जो मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान है कृष्ण, उनकी लिंगालय, उनके जो विग्रह है उसका दर्शन करें, यहां पर करें, धामों में जाकर करें, है ना। तद भक्त गतार स्पर्श अंग संगम, और फिर क्या करें? ऐसे जो भगवान है मुकुंद, उनके जो भक्त हैं उनके संग अंगम, उनकी अंगों को लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए सामने से कोई भक्त मिला तो हरे कृष्णा करके चले गए, उनका गलत से स्पर्श करना चाहिए। कोई हमसे बड़े डिसाइपल हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, हमसे छोटे हैं तो उनको गले लगाना चाहिए, सामने वाले हैं तो उनसे वांछा कल्प शुरू करना चाहिए, पर सबसे संग अंगम, उनके अंगों का संग करना चाहिए। तद भक्त गतम स्पर्श अंग संगम ग्रहणम चतद पाद सरोज सौरभे, और क्या करें? अपनी नाक का इस्तेमाल करें, भगवान के जो चरणों से जो तुलसी आती है और फूल आते हैं उनको सूंघने में इस्तेमाल करें, है ना। जैसे ये है, को ऐसे करें तो सूंघे, ये भगवान की सबसे बड़ा निर्माण है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। फिर क्या करें? श्रितम तुलसाय रसनम तद अर्पिते, और भगवान के जो अर्पित तुलसी है और भगवान का प्रसाद है उसी को बस ग्रहण करें, और कुछ ग्रहण ना करें। फिर उसके बाद बताया है, पदो हरेर क्षेत्रे पद अनुसरण में, और अपने पैरों को कहाँ इस्तेमाल करें? हरेर क्षेत्रे, जहां पर भगवान का धाम है, जैसे भगवान एक जगह रहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं एवरी इस्कॉन टेम्पल इज अ वैकुंठ धाम, एवरी टेम्पल इज अ धाम, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। तो इस मंदिर में आने में पदो हरेर क्षेत्रे पद अनुसरण में, ऐसा अनुसरण करें कि इन पैरों का इस्तेमाल सिर्फ हो तो सिर्फ ठाकुर जी के विग्रह की सेवा में आने के लिए हो, और कुछ ना हो। शिरो ऋषिकेश पाद अभिवंदने, अपने जो शिर है, सिर, इसका क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में अभिवंदन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब वो है जो सारी इंद्रियों के स्वामी है। जब हम उनकी इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे तो फिर हम भी क्या कर पाएंगे? अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उच्चते, और तभी हमारी भक्ति की उच्चति होगी। कामम च दास्यम न तो काम कामे, और कामम च दास्य मतलब, कामम मतलब बताया गया है कि भगवान जो है वो काम को भी जीतने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब होता है जो कामदेव है, और उसको भी जीत लें तो वो है मदन मोहन, और राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, उनको भी मोहने वाली जो है वो राधा रानी है। ऐसे राधा और कृष्ण जो हैं कामम च दास्य, उनका दास बन के अपना जीवन जिए। ना तो काम काम है, इस भौतिक जगत की कामना और डिजायर्स और इच्छाओं के लिए अपने जीवन को ना जिए। यथा उत्तम श्लोक ज्ञान आश्रयम रति, जब हम इस प्रकार के उत्तम श्लोक, ये जो श्लोक है ये उत्तम श्लोक है भागवतम का, इसके ज्ञान आश्रय, इसके ज्ञान के आश्रय में लेंगे, तब रति हमारे जीवन में कृष्ण रति उत्पन्न होगी, है ना। अभी हमारे जीवन में कृष्ण रति उत्पन्न होगी, अदरवाइज क्या है, हम अपने जीवन में आए हैं और चले जाएंगे। देखा जाता है, एक छोटी सी स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि एक बार एक जगह एक मेला लगा था, और उस मेले के अंदर क्या हुआ कि लोगों को 1,00,000 रुपए का टिकट दिया गया। तो लोग सोचते हैं जब कॉस्टली इज द बेस्ट, है ना, आजकल है ज्यादा महंगा ब्रांड तो बेस्ट है, सस्ती चीज मतलब बेकार है। तो आजकल लोग चाहते हैं कॉस्टली आइटम पहनना, कॉस्टली आइटम खरीदना। तो 1,00,000 रुपए का टिकट देखकर दिल्ली में लोग परेशान हो गए, हरियाणा में, फरीदाबाद के लोग, वाह 1,00,000 रुपए का टिकट कुछ बढ़िया चीज होगी। तो सारे पैसे वाले लोगों की लाइन लग गई, और क्योंकि सुबह 4 बजे खुलना था वो मेला वो फेयर, तो लोग 2 बजे से लाइन में खड़े हो गए। 1,00,000 रुपए देने के बाद भी भीड़ थी, इसीलिए हमारे मंदिरों में भी देखे हैं तो VIP में लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि सारा आदमी, हर आदमी अपने को VIP समझता है, है ना। और वो सबसे आगे खड़ा था 2 बजे से, एक आदमी, उसका नंबर आया 4 बजे, जब पर्दा खुला तो वो सेंटर स्टेज में पहुंचा जहां पर वो था, और बाकी लोगों को रोक दिया गया गार्ड के द्वारा। जब अंदर पहुंचा तो उसने कहा आप क्या दिखाएंगे 1,00,000 रुपए में, बहुत इतना एडवर्टीजमेंट। इंद्रियां हमारी, विषयान पुंसा संगत से शुभ जाए थे, भगवान विषयों का ध्यान ऐसा कराते हैं एडवर्टीजमेंट वाले कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शोभ जायते, उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और फिर वहां पहुंचकर क्या हुआ, जब वहां पहुंचा 2 बॉक्सर खड़े थे पहलवान, उन्होंने मारना शुरू किया, दे दनादन खूब मारा उसको। जब खूब मारा तो उसके शरीर से एकदम पसीना खून वून निकलने लगा। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, कह रहे अभी तो छोड़ रहे हैं, जान से मार देंगे, बाहर जाकर किसी को मत बोलना कि हमने क्या किया, तुम्हें मारा है। कह रहा ठीक है, बाहर जाके क्या करना, तारीफ करना, कह रहा ठीक है। फिर दूसरे नंबर बाहर जब क्यूरोसिटी हो जाती है, दूसरा आदमी बोला बड़ी देर हो गई आनंद ले रहा है, 20 मिनट से बाहर नहीं आया, जैसे ही बाहर आया, अरे अरे प्रभु प्रभु क्या हुआ बताओ कैसा था अंदर। अरे पूछो मत, आनंद ही आनंद, इतना मजा आया बस पूछो मत, 1,00,000 रुपए देने का पूरा वसूली। अच्छा, और वो भी खुशी से अंदर जा रहे हैं, ऐसे ही सब लोग करते रहे। अगर देखें तो हमारे जीवन में भी तो हम यही कर रहे हैं, ये तो भौतिक जगत है, इसमें हमें घूसे पड़ रहे हैं, माया के धनाधन मार रही है, लेकिन जब हम बैठते हैं अपनी सोसाइटी में तो क्या बोलते हैं, I am very much happy। हाँ, ये दिस इज अ प्लास्टिक स्माइल, नकली हंसी से हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से हर एक भक्त हर एक व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि उसको कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं हुई है। जब तक कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में इसी प्रकार से हम घूसे लात खाते रहेंगे, और दूसरे जब पूछेंगे प्रभु जी आप कैसे हैं, कभी कोई बोलता है बुरे हैं, क्या बोलते हैं प्रभु जी, बस अच्छे हैं बढ़िया हैं, अंदर से रो रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए एक महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में, ये क्वेश्चन ही बेकार है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूछे हाउ आर यू, अगर वो भक्त है उसे कृष्ण चेतना प्राप्त हो रही है तो वो कभी भी दुखी नहीं है, है ना, हर वक्त वो तो प्रसन्न रहेगा। और अगर मेटीरियल व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, उससे पूछे हाउ आर यू आप कैसे हैं, तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि वो बोलेगा आई एम हैप्पी, लेकिन हृदय से तो वो दुखी है। तो इसलिए इस कृष्ण को ही काट देना चाहिए जीवन में, जब भी मिले तो क्या बोलना चाहिए, वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावन, पूछे ही नहीं हाउ आर यू, या फिर अगर पूछना ही है तो बोले प्रभु जी आज आपने क्या कृष्ण कथा पढ़ी, क्या कृष्ण कथा सुनी, जरा कुछ बताइए। ये ही जीवन में हमारे प्रश्न होने चाहिए, है ना। और अपने बिना किसी मोटिवेशन के, अनमोटिवेटेड अनअलॉयड, अनअलॉयड मतलब जिस सोने जिस चीज के अंदर कुछ भी मिश्रित नहीं है, अनमोटिवेटेड, और हमारा कोई हेतु नहीं है, अहेतु की भक्ति जब हम करेंगे तब हमारे को भगवान की कृष्ण चेतना प्राप्त होगी। अहेतु की भक्ति के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी गए और जाकर उन्होंने लंका का दहन किया, जब लंका का पूरा दहन कर दिया तो अंजनी माता जो हनुमान जी की माँ है उन्होंने पूछा कि हनुमान तुम में इतनी शक्ति है, तुमने पूरी लंका को जला के राख कर दिया, लेकिन तुमने रावण का वध क्यों नहीं किया। तो उन्होंने अंजनी माता को कहा कि माता अगर मैं रावण का वध कर देता तो फिर रामचंद्र का वध करते, और फिर लोग जय श्री राम कैसे बोलते, और मैं कैसे राम भक्त हनुमान बनता। तो अंजनी माता के आंखों से नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अंजनी माता समझ गई कि इसी प्रकार का जो वैराग्य है, त्याग है, ये हमको करना चाहिए भगवान की सेवा में। अभी क्या होता है जीवन में, हमें कोई सक्सेस मिल जाए तो क्या कहते हैं, आई डिड इट, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, आई एम द डूअर, प्रभु जी मैंने किया, कितना सुंदर सजाया। और फेलियर हो जाए उसी प्रयास में, भगवत गीता का टारगेट लिया 1000 और हुई 100, फिर क्या बोलेंगे, प्रभु जी किस्मत में मैंने तो बहुत प्रयास किया था, पता नहीं भगवान ने ऐसा कर दिया। तब भगवान ने क्यों किया, तब आपने क्यों नहीं किया? और ये जब 100,000 से 1,100 हो जाए तो प्रभु जी इस बार तो ऐसे ऐसे स्किल अप्लाई किए मैंने, ये नीड इंटरेस्ट कंसर्न सब पता करके मैंने ना वो सब कुछ एकदम स्किल ऐसे अप्लाई किए प्रभु जी सारा 100%, तो 1,100 मैंने भगवत गीता। तब ये नहीं बोलेंगे प्रभु जी मैं क्या कर सकता हूँ, अहंकार हूँ मैं तो अहंकारी व्यक्ति हूँ, ठाकुर जी की इच्छा थी तो इसलिए 1100 गई, ठाकुर जी की 600 गई, मेरा प्रयास तो उतना ही रहता है 100%, है ना। ऐसे सेल्फलेस सर्विस नहीं करते हैं हम लोग, आ सकते हैं। और आता है लक्ष्मण जी की कथा से कि लक्ष्मण जी जब वशिष्ठ ऋषि के साथ में, जो उनके गुरु हैं लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि, ये तीनों जाते हैं सीता जी का स्वयंवर कराने के, रामचंद्र जी का स्वयंवर होने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर बताया गया है कि जब भी ये लोग जाते थे तो शाम को 7 बजे जब गौर आरती हो जाती है, मतलब आरती जब संपन्न हो जाती है संध्या आरती, उसके बाद कथा होती है, तो भगवान भी कथा सुनते हैं क्योंकि भगवान मानव लीला कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। तो गुरु उनके कथा करते हैं, 8 बजे कथा शुरू होती है प्रसादम के बाद, और 8 बजे से रात को 11 बजे तक कथा चलती रहती है ना, और 11 बजे तक कथा वो रोकते भी नहीं है, रोजी 1 घंटा हो गया प्रसादम टाइम, ऐसा नहीं होता, कथा चलती रहती कॉन्टिन्यूसली। और 11 बज जाते हैं रात की कथा सुनते सुनते, और फिर गुरु क्या कहते हैं, अब मुझे निंद्रा आ रही है मैं सोना चाहता हूँ। तो फिर रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों मिलकर क्या करते हैं, लगे चापन पाँव दोनों भाई, दोनों पाँव चापन पाँव दबाने लग जाते हैं, और फिर दबाते दबाते जब 1 घंटा निकल जाता है, रात के 12:30 बज जाते हैं, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मुझे भी निंद्रा आ रही है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप सोइए, तो जब वो सो जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके पांव दबाते हैं 1 घंटे तक, मतलब रात के 1:30-2 बज जाते हैं, और फिर वो वहीं पर ही, रामचंद्र जी कहते हैं अब तुम जाकर सो जाओ, तो वो वहीं पर ही बैठे बैठे ही सो जाते हैं, 15 मिनट सोते हैं और उसके बाद फिर उठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उठने के बाद उनको भगवान भी उठेंगे 3 बजे के करीब, रामचंद्र जी और वशिष्ठ ऋषि भी उठेंगे, तो उनके उठने से पहले सारी पूजा की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, कुएं से पानी लाना, ये सारा काम करना है। तो लक्ष्मण जी 1:45 सोए और 2 बजे उठ गए, और इस प्रकार से 2 बजे उठने के बाद फिर उन्होंने सारी तैयारी करी, 3 बजे रामचंद्र जी भी उठ गए, और फिर वशिष्ठ ऋषि भी 3:30 बजे उठ गए, और रामचंद्र जी गुरु से पहले उठे और रामचंद्र जी से पहले लक्ष्मण जी उठे। तो सब कुछ उठने के बाद भी जो है विजेता कौन है, श्री राम। अगर लक्ष्मण जी का जीवन देखें तो कितना वैराग्य, उन्होंने अपनी पत्नी का वैराग्य किया, रामचंद्र जी सीता मैया के साथ हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए वनवास में, 14 साल तक बिना अपनी फैमिली के, अपनी माँ के, अपनी पत्नी के, भगवान ने रावण राम की सेवा करी, और सेवा भी कैसी करी कि 15 मिनट अगर नींद मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, है ना। इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, हम हैं तैयार, हम तो 6 घंटे 8 घंटे की नींद नहीं मिलती, उसके बीच में कोई सेवा बोल दे बस 2 दिन के लिए, तो प्रभु जी हरे कृष्णा हमारे साथ नहीं हो सकता, है ना। तो हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक बोल्ट होता है जो मशीन का, अगर वो नीचे गिर जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो मशीन के अंदर है तो वो मशीन पूरी करोड़ों रुपए की हो सकती है, लेकिन वो बोल्ट जो 10 रुपए का निकल के बाहर गिर गया, उठा के सड़क पे फेंक देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे तब तक हमारी संसार में वैल्यू है, जब हम कृष्ण से अलग होकर गिर गए संसार में तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू लाना चाहते हैं तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि याद करने का उल्टा क्या होता है, बता सकते हैं, याद का उल्टा दया। जब हम भगवान को याद करते हैं तब उनकी दया बरसती है, अगर हम भगवान को रिमेम्बर, इंग्लिश में रिमेम्बर करते हैं तो रिमेम्बर नहीं बनना पड़ता इस भौतिक जगत का, रिमेम्बर है ना, दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, लेकिन हम बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान पे जो है विश्वास नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक लेक्चर के अंदर कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अपना प्लान चलाता है, लेकिन चाहता नहीं है कि कृष्ण का प्लान चलता है। देखिए, अगर चूहे को भी देखें तो चूहा क्या करता है, एक बिल में 4-4 कमरे बनाता है अंदर, आप देखें कभी बिल को, तो एक बिल एक साइड से खोदना शुरू करेगा और अंदर है ना गैप्स बनाता रहता है, गेट बनाता है, खिड़कियां बनाता है, फिर उधर दूसरी साइड से बाहर निकलता है, 2 एंट्री गेट, एक एंट्री एक एग्जिट गेट, मॉल बना रहा है पूरा नीचे से, और उधर से सांप जो होता है उसको ध्यान पूर्वक देख रहा होता है कि बना ले बेटा बना ले, और फिर वो धीरे से अंदर जाता है और उस चूहे को भी खाता है और फिर अंदर आराम से विश्राम करता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे भक्तों को भी ऐसा ही करना चाहिए, अजागर वृत्ति अपने जीवन में उत्पन्न करनी चाहिए। ये भौतिक लोग इतने बड़े बड़े गार्डन बनाते हैं और पार्क बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, और हम लोग जाते हैं वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। हमने थोड़ी बनाया वो मॉल, वो पार्क हमने नहीं बनाया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अजगर की वृत्ति ऐसी होती है, वो देखता है चूहा मेहनत करके सब कुछ बनाता है और चूहे को भी खा लेते हैं और फिर उस जगह में भी रहते हैं। तो देखें भक्तों को भी इसी प्रकार से ज्यादा समय एक्स्ट्रा एंडेवर में नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा कुछ प्राप्त करने में नहीं लगाना चाहिए, सारा समय किस में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए, है ना भगवान। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लेक्चर में हर बार बताया है नियतम कुरु करो, तो अपने कर्मों को नियतम कुरु कर्मा, अपने कर्मों को नियतम नियमित जो है करते रहना चाहिए। क्योंकि एक जगह लिखा है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जो सोया हुआ शेर है उसके भी मुख में अपने आप हिरण नहीं आता, उसको हिरण को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ उसके प्रारब्ध में अगर होगा तो हिरण मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध में ब्रह्मा जी ने हिरण लिखा हुआ है तो वो अपने आप आएगा, जाएगा शेर भैया मुंह खोलो मैं बैठना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, और ब्रह्मा ने हमारे जीवन में जो कुछ भी डिस्टेंड किया है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन सबसे सर्वोपरि चीज है हरि की आराधना, इन दोनों हाथों को जोड़कर इन हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए और हरि की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि बताया गया है आराधितो यदो हरि तपस्यम तथा किम, अगर आप हरि की आराधना करते हैं तो फिर तपस्या और कुछ करने की जरूरत ही क्या है। आराधितो यदो हरि तपस्यम तथा किम, फिर तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। ना आराधितो यदो हरि तपस्यम तथा किम, और अगर आपने हरि की आराधना नहीं करी, कृष्ण आराधना नहीं करी, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते रहे तो किसी तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सर्वे सर्वा कृष्ण है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। और अंतर बाहिर यदि हरि, अगर आपके हृदय में अंदर और बाहर हरि आ गए, कृष्ण चेतना प्राप्त हो गई, तपस्यम तथा किम, तब आपकी तपस्या संपूर्ण बन जाएगी। बोलते हैं ना बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा नरसिंहम मदिम शरणम प्रपदे, ऐसे नरसिंह जो हमारे अंदर और बाहर, तो वो भी यहीं पर बताया है अंतर हरि बाहर हरि तपस्यम तथा किम, तब हमारी तपस्या परिपूर्ण होगी जब अंदर भी हरि और बाहर तो माया ही माया है, हरि नहीं है। तो अपने जीवन को प्रयास करें, इस तरह से मोल्ड करें कि कृष्ण चेतना हमको प्राप्त हो, सदा हम भगवान को याद रखें, अपने हाथों का इस्तेमाल सदा भगवान के नामों का जप करने में, भगवान को याद करने में गुजारें, और इन दोनों हाथों को हमेशा ऊपर करके जिस प्रकार द्रौपदी चिल्लाती हैं, गौरंग महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, काफी सारे मैंने पॉइंट्स और भी हैं लेकिन टाइम अब खत्म हो गया हमारे पास। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई प्रश्न। पुरंदराश्रीमद् भागवतां की पदेदा पावन श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंद। गुड़गांव जाना है आज, वहाँ जो है एक हफ्ते से वहाँ बॉम्बे गए थे, बॉम्बे से वहाँ।